ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महापतनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाने कृष्णाय कृष्णभक्ताय पदभक्ताय यं प्राप्यतं तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकातर्याजिमा पुत्रेति तन्मयतया कर्मोऽभिनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तुष्य तवैवास्मि तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय मां च मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित कर रहा हूं। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि बार श्रद्धा पुष्पांजलि ज्ञापन करता हूं। मेरे प्यारे बंधुओं, माताएं बहने और लड़कियों, वैष्णव बंधु, हम लोगों का आज चतुर्थ दिन वचन है। आज हम लोग, जैसे कि मैंने कल बतलाया था, भक्ति के तारतम्य से भक्तों का तारतम्य के संबंध में हम कुछ बतलाएं, उसके उदाहरण से तो आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। पहले तो ये कल जो बतलाया था कि बिना किसी जागतिक स्वार्थ के अपने तन मन वचन से और भाव से जितनी प्रकार की चेष्टाएं हैं उन सब को कृष्ण के सुख के लिए करो तो ये उत्तमा भक्ति होगी। इसके उपलक्ष्य में हमने ध्रुव का उदाहरण लिया। उसके पहले हमने महाराज हरिश्चंद्र, शिवी, दधीची इत्यादि का उदाहरण दिया कि भक्ति से उनका कोई संबंध नहीं था, वो लौकिक धर्म था, भगवान के उसे सेवा कुछ नहीं कर सकते। ध्रुवजी में देख लाया कल हम लोगों ने, भगवान के मंत्र से भगवान की आराधना की और उसे प्रसन्न तो किया, यहां तक तो यह ठीक है, किंतु भक्ति के बदले 36,000 वर्षों का राज्य उनको मिल गया, इसलिए ये भी शुद्ध भक्ति नहीं। और लोगों की तो बात क्या, सनक, सनंदन, सनातन इत्यादि चतुर्थ कुमार, और अपने पहले जीवन में सुखदेव गोस्वामी जब ब्रह्मवादी ऋषि थे, ब्रह्मवादी, तब तक इनसे भगवान के सेवा से कोई भी मतलब नहीं था, इसलिए इनको ज्ञानी कहा जा सकता है, ज्ञानी भक्त नहीं कहा जा सकता। ज्ञानी और ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञानी भक्त में अंतर है। जो लोग सारे संसार को, विश्व को झूठा देखते हैं, ये सब झूठा जगत है, ब्रह्म ही सर्वत्र है, वह निराकार है, तो ये लोग ज्ञानी हो सकते हैं। किंतु ज्ञान भी भक्ति के बिना अपना फल नहीं दे सकता, कभी देने में संभव नहीं है। और ज्ञानी भक्त होता है भगवान के प्रति समर्पित होता है, कृष्ण से, भगवान से उनका संबंध होता है, वो ज्ञानी भक्त होते हैं। ज्ञानी लोग भगवान को निराकार मानेंगे, सर्वत्र ब्रह्म को व्याप्त इतना तो मानेंगे, किंतु भगवान की किसी सेवा में उनका अधिकार नहीं है, वो नहीं कर सकते। और ज्ञानी भक्त जैसे प्रह्लाद महाराज हैं, पिछले जीवन में अपने सनक सनंदन, सनत कुमार इत्यादि भी हैं, भीष्म पितामह जी भक्त हैं, ज्ञानी भक्त हैं। ये लोग किस दृष्टि से भगवान को देखते हैं? भीष्म पितामह भगवान से लड़ रहे हैं, उनके अंगों पे बाण मार रहे हैं, तो भी उनको ज्ञानी भक्त कहते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि हमारे प्रभु को ये बाण स्पर्श नहीं कर सकता, उनको विष असर नहीं कर सकता, आग को खा सकते हैं, उनका शरीर सच्चिदानंदमय है, इसलिए हमारे बाण उनको स्पर्श नहीं कर सकेंगे। हमारे प्रभु तो जगत के नियंता है, उनको भूख नहीं लगती, कभी वो थकते नहीं है, उनको कोई कष्ट नहीं दे सकता, इसलिए रसोई बना करके खिलाएंगे नहीं। ये लो, हमारे प्रभु अपने में आप ही वो सब, इसलिए भीष्म पितामह जी बाणों से युद्ध कर रहे हैं और समझते हैं कि हम उन्हीं की इच्छा के लिए, प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। यदि मैं युद्ध नहीं करता तो कौरव पांडवों से युद्ध नहीं करते और कृष्ण की इच्छा पूरी नहीं होती, असुरों का संहार नहीं होता और धर्म का प्रचार नहीं होता, प्रतिष्ठा नहीं होती। किंतु कृष्ण आए थे धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, असुरों का दमन करके शिष्टों का पालन करने के लिए। इसलिए भीष्म पितामह जी कौरवों की तरफ से नहीं लड़ते तो युद्ध नहीं होता, किसके बल से वो लड़ता, और फिर लड़ाई नहीं होती तो दूसरों का संहार नहीं होता। इसलिए भीष्म पितामह जी को ज्ञानी भक्त माना है। प्रह्लाद महाराज जी निशिंग उनके सामने आए, निशिंग भगवान ने कहा जे वर मांगो, तो उन्होंने कहा जे मैं बनिया का तो बेटा हूं नहीं, मैं बनिया नहीं हूं, बनिया घटिया माल दिखला करके और बिक्री कर देता है और सैंपल दिखलाएगा अच्छा, और उसमें डंडी भी मार करके वो उसमें भी कुछ पैसा कमा लेगा। हम तो आपकी भक्ति करते हैं बिना हेतु की, इसलिए हम वर नहीं चाहते। भगवान ने कहा कि हमारा ये दर्शन अभोग है, मांगो फिर भी, मैं हमारे पिताजी को आप भवसागर से पार कर दीजिए, वो पार हो गए हैं, तुम्हारा जैसा पुत्र जिनको है वो 21 पीढ़ी के माता पिता सबका उद्धार हो जाता है, उधर में जगह नहीं हो तो इस सामने में जगह है, यहाँ पर बैठ जाओ सब, और वहां जगह है तो ठीक है, नहीं तो इधर में जगह है, भीतर में चले आओ। तो प्रह्लाद महाराज जी का ऐसा चरित्र, सर्वत्र भगवान को देखते हैं, सबके अंदर में भगवान देखते हैं और भगवान के अंदर में सबको देखते हैं, उनके भगवान को भूख नहीं लगती, वो थकते भी नहीं उनके प्रभु जो उनका पैर दबाएंगे, भूख नहीं लगती तो इसलिए खिलाने की भी जरूरत नहीं है, वो तो विश्व ब्रह्मांड का खिलाते हैं, उनको कौन खिलाएगा, वो तो जगत के माता पिता भाई बंधु सभी वही हैं। इसलिए ये ज्ञानी भक्त है, हमारे प्रभु में ऐश्वर्य इतना है, वो थकते नहीं, भूख नहीं लगती, उनको प्यास नहीं लगती, इस सबसे अधिक है। इसलिए इनको ज्ञानी भक्त कहते हैं। ज्ञानी भक्त जब नृसिंह भगवान आए तो प्रहलाद महाराज ने क्या सेवा की? कोई सेवा की? कोई सेवा नहीं। भीष्म पितामह जी लड़ने के अतिरिक्त और क्या सेवा की? देखो, भीष्म पितामह जी एक तरफ में अपने पक्ष के कौरवों के सेनापति, दूसरी तरफ में भीम को रख दिया है सेनापति और धृष्टद्युम्न को सेनापति के पद पर। बीच रथ में रथ ले गए कृष्ण, और इसके बाद में गीता का ज्ञान सुनाया। गीता का ज्ञान सुनाने के बाद में अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। करिष्ये वचनं तव, मैं तुम्हारा आदेश पालन करूंगा जैसा कहो। इसके बाद में कृष्ण ने कहा सब देरी करने की जरूरत नहीं, शंख बजा रहे हैं हम। उन्होंने शंख बजाया और पांचों पांडवों ने भी शंख बजाए बड़े जोर के साथ में। अब युद्ध होने को ही आरंभ है। अर्जुन ने अपने तर्कस से बाण निकाला और उसे सर्पसंधान करके धनुष पर उन्होंने भीष्म पितामह को एक बाण ऐसा लिया जो मारा तो उनके चरणों के समीप जाकर के धीरे से गिरा, उनको कुछ नहीं हुआ, मैंने प्रणाम किया। भीष्म पितामह जी बड़े प्रसन्न हुए, तुम्हारी विजय हो, मन ही मन में आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारी विजय हो। यदि तुम हमको पहले प्रणाम नहीं करता तो तुम्हारी विजय नहीं होती। देखो कैसे लड़ते रहे दुर्योधन की तरफ से, विजय किसकी चाहते हैं? अर्जुन की विजय चाहते हैं, पांडवों की विजय, क्योंकि कृष्ण जिस तरफ में है और गांडीवधारी अर्जुन जिधर में है और रथ जिसके तरफ में है, जिसकी ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान रहे हैं, भला उसको कौन पराजित कर सकता? उद्धत विजय निश्चित रूप से है। इसलिए भीष्म पितामह जी जानते हैं, इसलिए परम भक्त हैं। देखो कैसे भक्त हैं, एक उदाहरण के द्वारा समझाऊं। दुर्योधन 10 दिन, जबकि भीष्म पितामह जी प्रतिदिन 10,000 रथियों को मारने लग गए, उस समय भीष्म पितामह जी दुर्योधन बड़ा दुश्चिंतित हुआ। आज 7-8 दिन हो गया, पांडवों में से कोई एक नहीं मरा, सभी ठीक हैं वो, और अंत में उनकी विजय होती है। इसलिए भीष्म पितामह जी हमारे तरफ से लड़ तो रहे हैं किंतु उनकी पांडवों की विजय चाहते हैं, ऐसा समझ करके उनके पास में गया और उनके चरणों में गिर बोले, पितामह आप तो लड़ तो रहे हैं हमारी तरफ से किंतु मैं समझता हूं कि विजय चाहते हैं पांडवों की। आज तक पांडवों पर किसी पर भी कोई आंच तक नहीं आई। उन्होंने कहा जी ऐसी बात मत समझो, ऐसी बात मत समझो, देखो एक बात करो, कल तुम अपनी पत्नी को 12 बजे रात में ले आना हमारे पास में, और उसको अचल सौभाग्य के लिए मैं बर दे दूंगा। उस समय ध्यान में करता हूं प्रभु की, और उस समय तुम उसको लेकर के आओगे और हमारे सामने आएंगे तो कहेंगे तुम्हारा सौभाग्य अचल हो जाए। इसका मतलब है जब पांडव लोग हार जाएंगे तभी तो तुम्हारा सौभाग्य अचल रहेगा, नहीं तो दुर्योधन यदि मरी गया तो फिर क्या हो गया। इले जाओ कल लेकर के आना, सौभाग्यवती हो वो, मैं ये बर दे दूंगा और इस तरह से तुम्हारी विजय हो जाएगी। दूसरे दिन शाम से ही बड़ी भारी जोर बरसात आरंभ हुई, बिजली कड़कने लगी और जोरों से बरसा, घना घोर मूसलाधार वर्षा होने लगी और आंधी भी चलने लगी, तूफान चलने लग गया। 12 बजे के समय और जोर से पकड़ लिया बरसात, उस समय दुर्योधन ने कहा कि आज रहने दो, कल चलेंगे, आज इस घनाघोर वर्षा में कैसे जाएंगे, आज रहने दो, कल हम ले चलेंगे। इसलिए अपनी पत्नी को मना कर दिया। किंतु कृष्ण जग रहे हैं, कृष्ण ने कहा जे द्रौपदी अभी समय है, मेरे साथ में आओ, रथ में बैठ जाओ। और रथ में बैठा लिया। कहां चलना है? भीष्म पितामह के यहां, आज उनसे वर लेना है। वर तो देना था उनको दुर्योधन की पत्नी
भानुमती को,
किंतु अब चलो तुम घूंघट निकाल ले। और जब उनके पास में जाना, प्रणाम करना, घूंघट लिए हुए तुमको पहचान न सके। और जब वर दे देंगे तुमको, अचल सौभाग्यवती हो, तुम्हारी ही विजय होए, तुम्हारे पक्ष की, इसके बाद में तुम उनको घूंघट निकाल करके प्रणाम कर लेना, बस बस। लेकर के गए, वो अंधकार तूफान और आंधी और बरसात में उनके निवास स्थल पर ले गए और रथ से निकाल करके छतरी लगा करके उसको द्रौपदी को सखी को भेज दिया। वो ध्यान में मग्न थे, पैरों की आहट से उनकी समाधि जब टूटी तो देखा कि हमारे सामने भानुमती खड़ी है, जैसा हमने कल कहा था। और उसने, द्रौपदी ने उनको प्रणाम किया। उन्होंने सोचा कि भानुमती प्रणाम कर रही है, तुम्हारा सौभाग्य अचल हो, तुम्हारी ही तरफ की जीत हो, अखंड सौभाग्यवती हो। द्रौपदी जी ने मुस्कुराते हुए अपने अंचल को ऊपर उठा लिया। अरे द्रौपदी, तू कहां से कैसे आ गई, तुमको कौन लाया यहां, है कोई लाने वाला? उन्होंने कही कोई श्याम सुंदर आए हैं। कहां हैं? रथ पर खड़े हैं, बैठे हैं, हमको यहां पर दे गए। फिर कृष्ण वहां पर आए, कृष्ण भी मुस्कुराने लगे, वो भी मुस्कुराने लगे। क्या भीष्म पितामह जी जानते नहीं थे? जान तो लिए, सर्वज्ञ वो भी हैं, साधारण नहीं है। जैसे हनुमान इत्यादि भक्त लोग सर्वज्ञ होने पर भी अपनी सर्वज्ञता का प्रयोग नहीं करते, इसलिए प्रयोग नहीं किया, जानते थे ये उन्हीं लोगों की विजय होनी है, इसलिए अखंड सौभाग्यती उनके लिए। इसलिए भगवान के भक्तों की सब समय ये सेवा करते थे, रक्षा करते थे। इसलिए ये ज्ञानी भक्त हैं, कोई सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि इनके भगवान को थकावट नहीं होती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं होती, क्या करेंगे? इसलिए सेवा नहीं किए, इसलिए ज्ञानी भक्त हैं। सनक सनंदन, सनत कुमार और सुखदेव गोस्वामी अपने जीवन क्षेत्र में पहले ऐसे ही थे, ऐसे ही थे। पंखे को थोड़ा सा कंट्रोल करो, गले में ना आए। वो कहां गए पंखे वाले? ऐसा पंखा वो कर दो जिससे कि हमारे गले तक ना आए, नीचे ही गर्दन, नहीं तो नीचे उतार करके सीढ़ी पर रख दो। हाँ बस घूमता रहे। अच्छा ठीक, और थोड़ा पीछा करो, ऐसे छोड़। तो ये ज्ञानी भक्त हुए। सनक सनंदन सनातन भी ऐसे ही ज्ञानी भक्त थे, किंतु सुखदेव गोस्वामी अपने पिता व्यास देव जी की कृपा से भगवत भक्ति में प्रवेश किया, और ब्रह्मा जी की कृपा से उनके पुत्र सनक सनंदन सनातन वैकुंठ में पहुंचे और भगवान का दर्शन किया। उनके चरणों में जो तुलसी दी गई उसकी मकरंद को अब ग्रहण कर, बड़ा ही सुंदर सुगंध, और वैकुंठ में गए और भगवान का दर्शन करके उनके परम भक्त हो गए। ये लोग तो ज्ञानी भक्त हैं, सर्वत्र ही इनको पता रहता है ये भगवान है। जैसे कोई ऋषि यशोदा जी के घर में गया और देखा कि यशोदा मैया कृष्ण को गोदी में ले नहीं रही हैं, और चोर कह रही हैं, झूठे लबाह कह रही हैं कृष्ण को, परब्रह्म को। और ऋषि देखता कि अहो देखो तो ये लोट पोट कर रहे हैं जमीन में, ये स्वयं भगवान है, ब्रह्म है, परम तत्व है, इनको गोदी में नहीं उठा रही। और धन्य है यशोदा, इसने कौन सा सौभाग्य का काम किया था, तीर्थों में स्नान किया था, दान पुण्य किया था या क्या किया था, जो आज पर ब्रह्म इसके बेटे बन करके और इसके डर से रो रहे हैं। तो वो लोग उस समय भी भगवान समझेंगे। ब्रज का कोई भी व्यक्ति कृष्ण को भगवान के रूप में उनको प्रणाम नहीं करता, तू तो कारी से बोलते हैं कहीं हमारी जूतो तो ले आओ, वहां पर ब्रह्म नहीं है, उनका ब्रह्म का जो शक्ति है न जाने कहां उड़ जाती है। यह है प्रेम, प्रेम सगाई सबसे ऊंची है ना, सुना है ना, प्रेम सगाई ऊंची है सबसे, इससे बढ़कर कहीं ज्ञान, ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, ज्ञान जो कुछ फल देता है वो भक्ति के सहारे जैसे देता है। इसलिए इनकी बड़ी, ये भक्त ब्रज वाले हैं, बहुत उत्तम उच्च कोटि के, इनकी अपेक्षा शुद्ध भक्त कौन है, महाराज अम्बरीश, यद्यपि साधक हैं, प्रहलाद महाराज जी, सनक सनंदन, सनत कुमारी इत्यादि ये सिद्ध लोग हैं, तो भी इनसे साधक होने पर भी इनका भाव बहुत ऊंचा है। क्या करते हैं, भक्ति का जो की परिभाषा जो दी गई है उसमें समस्त इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा भगवान की सेवा करने का नाम भक्ति है, ये बतलाया हमें। क्या करते थे, सिर के द्वारा भगवान को प्रणाम करते, हाथों के द्वारा मंदिर मार्जन करते, पैरों के द्वारा तीर्थों में भ्रमण करते, हाथों के द्वारा वैष्णव की चरण थूली लेकर के सिर पर रखते, मुख के द्वारा, जीवा के द्वारा भगवान का गान करते, उनकी वंदना स्तव स्तुति करते, इसी प्रकार से अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। प्रहलाद महाराज सब नहीं लगा सके किंतु इन्होंने लगाया, राज्यपाल मंत्रियों के ऊपर में छोड़ दिया ये तुम लोग देखना, और स्वयं भगवान का मंदिर मार्जन, आरती, उनको भोग और सब कुछ जो कुछ करना था वो अपने से आप करते थे। ये है वो, इसी के बल पर उन्होंने महर्षि दुर्भाषा जी का अभिमान चूर्ण विचूर्ण कर दिया। ब्राह्मण थे, ब्रह्म ऋषि थे, आकाश मार्ग में चलते थे, नीचे नहीं, जिसको जो कह दिया वही हो गया, मर जाओ मर जाओ, जीवित हो जाओ जीवित हो जाओ, ब्रह्मवादी ऋषि थे, किंतु अपने को ऐसा समझते, अभिमान था। और महाराज मैं बहुत नगण्य सेवक हूं भगवान का, दास बनने की चेष्टा कर रहा हूं, बहुत उनमें दीनताहीनता थी। दुर्भाषा उनके यहां आए, द्वादशी के दिन पारण करना था, सब भक्तों को खिला करके ठाकुर जी का अर्चन पूजन, उनका भोग राग समाप्त करके वैष्णवों को ब्राह्मणों को दे करके तब अपने आप पारण करना होता है, खाना होता है। तो वो सब प्रकार से तैयार बैठे थे अपने ठाकुर जी का प्रसाद लेने के लिए। द्वादशी का उन्होंने व्रत किया था निर्जला, इतने में दुर्वासा जी आ गए, आने पर बड़े प्रसन्न हो, आज द्वादशी का दिन, शुभ दिन, आप पधारे, आप यहां पर भोजन कीजिए, इसके बाद मैं करूंगा। ठीक है मैं भोजन करूंगा, मैं जरा जमुना पर जाता हूं, जरा आन्ही करने के लिए, स्नान करने के लिए मैं तुरंत आ रहा हूं। समय थी 24 मिनट का केवल, उसके बाद में समय नष्ट हो जाने पर, कोई पारण करने पर उसका व्रत भंग हो जाता है, उसका फल नहीं मिलता। उन्होंने लगा दिए आधा घंटा और बढ़ा दिया, इन्होंने सोचा जैसे भाई अब तो दो चार मिनट है, एकादशी व्रत का पारण करके अपने व्रत की रक्षा करूं भगवान की भक्ति के लिए, या ब्राह्मण का आदर करके जब तक नहीं आए तब तक मैं ठहरूं, आने के बाद में उनको खिला करके तब लूं, यदि देरी करता हूं तो हमारा व्रत नष्ट हो जाता है भक्ति का, और यदि ब्राह्मण का सत्कार नहीं करते हैं ब्रह्म ऋषि का, तो उनकी अवज्ञा होने पर मुझे अभी संपात भी कुछ दे सकते हैं। अंत में ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण कोई उत्तर नहीं दे सके। तब उन्होंने सोच करके सोचा, भगवान की भक्ति ही बड़ी है, इसलिए मैं भक्ति का आदर करूंगा, इसलिए मुझे पारण करना चाहिए। किंतु पारण कैसे करूंगा, भगवान का जो चरणामृत है तुलसी दिया हुआ, केवल एक बूंद पानी ले लूंगा, क्योंकि मैंने निर्जला उपवास किया था। तो इस तरह से पानी लेने से हमारा व्रत भी भंग नहीं होगा और पारण करना भी हो जाएगा। पीछे जब ऋषि आएंगे तब फिर मैं उनको खिला करके खाऊंगा। जो ही पारण किया, इतने में दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। अरे बदमाश, वृथाभिमान रखता है भक्ति का, तुमने मुझे निमंत्रण दिया, मैं आया, और हमारे पहले ही आकर के तुमने पारण कर लिया, अभी तुमको संपात देते हैं। मैं जटा उखाड़ करके फेंक दिया। फेंकने के साथ ही साथ में एक बड़ी भारी कृत्या राक्षसी आग के रूप में उपस्थित हुई, इसे जला दो, खत्म कर दो। वो आग एकदम उनके तरफ में दौड़ी, किंतु वो जहां थे वहीं पर रहे। अम्बरीश महाराज जी जानते हैं कि मृत्यु तो एक दिन होगी, इसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं, और हमने कोई अन्याय नहीं किया, इसलिए चुपचाप हाथ जोड़ करके खड़े रहे। इतने में भगवान का चक्र घूम रहा था उनकी रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए सब समय रहता है। बस तुरंत चक्र ने उस कृत्या को जला दिया, और जिसने कृत्या को पैदा किया दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा जलाने के। नंदघर है मैं जला, आग से एकदम जलने लग गए, झुलसने लगे, भगे। अम्बरीश महाराज मृत्यु से डरे नहीं, नहीं भगे, और ये ब्रह्मर्षि इतना शक्ति रखने वाले और मृत्यु के डर से भगे। सारी पृथ्वी में ब्रह्मलोक तक घूमे, चक्र उनको पीछा करता रहा। ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी हमारे पास में मत आना, तुम भगवत द्रोही है, भक्तों का अपमान किया है। शंकर जी के पास में गए, सब हमारे पास में मत आना। अंत में नारायण के पास में गए, ये नारायण के पास भी गए। नारायण ने कहा कि देखो, हमारे यहां आने से कुछ नहीं होगा, भक्तों के चरणों में अपराध किया है, वे हमारे, हमने अपना हृदय उनको दे दिया है, मैं और दूसरे को नहीं जानता। यदि पैर में कांटा गड़े तो थोड़े सिर से निकलेगा, मैं सिर हूं, हमारे पैर भक्त लोग हैं, इसलिए उनके चरणों में अपराध किया है, अपना कल्याण चाहो वहां जाओ। अब उनकी आंख खुली, इतने जो घूमते घूमते एक वर्ष लग गया, एक वर्ष तक महाराज अम्बरीश दोनों पैरों पर हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि इस ब्राह्मण को हमारे लिए बड़ा कष्ट हुआ, अपना कष्ट नहीं देखा। एक वर्ष बाद में लौट करके उनके चरणों में जब ऋषि गए तो उनको उठाया, महाराज हमारे लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। चक्र को देखा, इनके पीछे दौड़ा, चक्र को कहा यदि हमने कोई भी भगवान की सेवा की है, भक्ति की है, तो आप कृपा करके इसकी रक्षा करें, आप शांत हो जाइए। उनके स्तव स्तुति करने से चक्र लौट करके अंतरिक्ष होकर के चला गया। तब दुर्वासा कहते हैं, हो आज मैंने भक्तों की ये शक्ति हमने देखी, ओ अनंत दासानाम, आज मैंने देखा इनकी महिमा कितनी है, हमने इतना अपराध किया और हमको क्षमा कर दिया और चक्र सुदर्शन को भी लौटा दिया, इसलिए इनसे पढ़कर के और कुछ। इसके बाद में महाराज अम्बरीश ने चक्र को लौटा करके और फिर इनको खिलाया पिलाया, अपने खाए। तब कैसे भक्ति की महिमा है, एक गृहस्थ और कहां वो त्यागी ब्रह्मवादी ऋषि, योगीराज है, योगी नहीं योगीराज है, और कहां ये गृहस्थ भक्त, किंतु भक्ति का इतना बल है कि भगवान इनकी रक्षा करते हैं। इसलिए आप लोग भी यदि भगवान का भक्ति करते हैं और करती हैं तो डरने की जरूरत है, निर्भीक होकर के भगवान का भजन करें, कोई कुछ नहीं इस जगत में कर सकता।
निर्भीक होने की जरूरत है। ऐसे ही जैसे अम्बरीश महाराज, आप लोग भी गृहस्थ हैं, गृहस्थाश्रम भगवान की भजन करने के लिए है, उपलब्धि करने के लिए जो मैं आत्मा हूं, हमारे वो नित्य प्रभु हैं, मैं उनका नित्य दास दास हूं। तो ये हैं शुद्ध भक्त। हाँ, एक कीर्तन करो तो अच्छा सा, क्या कीर्तन? ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त को बतलाया, अप्रेमी भक्त, बजरंग बली हनुमान जी प्रेमी भक्तों की कोटि में है। इनके भगवान सर्वव्यापी नहीं, कभी कभी उनको अनुभव होता है कि ये स्वयं भगवान है, नहीं तो इनके प्रभु को भूख लगती है। इनकी पत्नी को रावण चुरा ले जाता है और समुद्र पार कर जाते हैं उस पार में, अक्षय कुमार आदि रावण के पुत्रों का वध करते हैं और सोने की लंका में आग लगा देते हैं और कहते हैं कि मैया हमारे पीठ पर चढ़ो, अभी हम पार करके राम के पास में ले जाएंगे। सीता जी ने कहा जी बेटा ऐसे नहीं, राम को ही ले आओ और फिर वो हमको ले चलेंगे, मैं परवश थी इसलिए रावण हमारे शरीर को छू सका, दूसरा राम के अतिरिक्त हमारे शरीर को कोई नहीं छू सकता, इसलिए अच्छा होगा कि राम को गए। राम को संवाद दिया और वहां से राम को ले आए, समुद्र में पुल बना, सेतु, सभी कामों में हनुमान जी रहते हैं, संकटों में हनुमान जी सब समय राम लक्ष्मण दोनों की सेवा करते हैं, रात भर जगते हैं, अपनी पूंछ को चारों तरफ से परकोटा बना देते हैं, उसमें सारी सेनाओं के साथ में राम विश्राम करते हैं और गेट पर अपने आप गदा लेकर के बैठते हैं, जरूरत होती उनके वाहन बनते हैं, राम और लक्ष्मण दोनों को कंधे पर बैठा करके युद्ध करते हैं, ऐसी कोई सेवा जो है नहीं करते। जबकि लंका विजय के बाद में राम आए अयोध्या में तो सारी सेवा को यही करते। एक दिन सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों मिलकर के बातचीत करने लगे, भाई ये कहां से बंदर आया, कोई सेवा ही नहीं करने देता हूं, इसलिए इस बंदर को छका करके किसी प्रकार से दूर रखना है, हम लोग दिन रात की सेवाओं को विभाग कर लें जिससे कि उसको मौका ना मिले जो कोई सेवा करे, इसलिए सारी विभाग करके सारी सेवाओं को दिन रात, रात के समय में सीता जी करेंगी और दिन के साथ में ये तीनों भाई उनकी सेवा करेंगी, हनुमान को एक सेवा के लिए नहीं रखा। जब बट गया आज हनुमान को उनके पास नहीं जाने दिया, भगवान के पास में, हनुमान जी बड़े चिंतित हुए क्या किया जाए, तो उन्होंने इन लोगों के पास में आकर निवेदन किया कि देखिए मैं तो बिना उनकी सेवा के जीवित नहीं रह सकता, इसलिए हमको कोई सेवा दे दी। उन्होंने ये कोई सेवा नहीं है, बहुत दिन तुमने सेवा कर ली। उन्होंने कहा अच्छा एक बात करो, राम को तो कभी जबाई नहीं आती, हो सकता है कभी आ जाए, इसलिए चुटकी बजाने का काम हमें दे दो, जब उनको चमाई आए तो मैं चुटकी बजाए। चुटकी किस लिए बजाते हैं? भगवान का स्मरण करते हैं जम भाई आलस्य आने पर, इसलिए ये चुटकी बजाने का काम मेरा रहेगा। उन लोगों ने सोचा तो इनको तो कभी जमाई आती नहीं है, ये दे दिया जाए ठीक है, अच्छा तो ठीक है तुम जब उनको जम्हाई आना आएगी तो तुम चुटकी बजाना। हनुमान जी को घर में तो घुसने नहीं दिया, हनुमान जी को जब ये सेवा मिली तो बड़े प्रसन्न हुए और चुटकी बजाने, चुटकी बजाने लगे तो राम को जम्हाई आने लग गई। अब दिन रात जम्हाई ले और ये चुटकी बंद नहीं थी, ये बंदर को देखो अब ये चुटकी बजा, भाई चुटकी किस लिए बजा रहा है? उनको जब भाई आएंगे तब बजाना। तो भाई मैं घर के बाहर हूँ, मुझे कब पता है जो उनको कब जब भाई आ रही है, इसलिए मैं बजा रहा हूँ। जो उनको कब न जाए आ जाए चुटकी, इसलिए उनकी कोई भी सेवा नहीं हो सकी। अंत में झक मार करके हनुमान की जो सेवा थी पद संवाहन और सबकी उनको बाध्य हो करके देना पड़ा। इसलिए हनुमान जी को प्रेमी भक्त कहते। एक मिनट बिना भगवान की सेवा किए वह रह नहीं सकते। इनके प्रभाव भगवान उनके लिए परब्रह्म नहीं है, दूसरों के लिए हो सकते हैं। सर्वांतर्यामी हो सकती है, उनको भूख नहीं लग सकती है, हो सकता, किंतु उनके लिए नहीं। सब समय राम की दास भाव से सेवा करते हैं, इसलिए ये प्रेमी। और भी सुनो, एक समय सीता मैया श्रृंगार कर रही थी एकांत में अपने घर में, प्रसाधन गृह होता है। स्नान करने के बाद में सिर में कंघी उंघी लगा करके सिंदूर लगा रही थी, इतने में वो पहुंच गया। अरे मैया 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 कहाँ गई, मैया कहाँ गई? देखा जैसे वो तो वो घर में प्रसादन घर में उसमें घुस गया। अरे मैया तू क्या कर रही है? तो उसने देखा जैसे सिंदूर लगा। अरे मैया ये लाल क्यों लगा रही है? बेटा इसलिए लगा रहा हूं कि हमारे पति तुम्हारे प्रभु वो चिरजीवी हैं, वो सुख से रहें, सौभाग्य के लिए मैं लगाती हूं ये बिंदी और सिंदूर। तो ठीक है, कुछ बोले नहीं, मनी मन में कुछ चिंता कर लिया। तो सीता जी जबकि श्रृंगार भवन से निकल करके चली गई अपने घर में, तो ये उस घर में घुसा और सिंदूर कहाँ है देखा, उसमें तेल में पूरे सिंदूर में तेल लगा दिया और फिर लगा करके अपने चारों ओर में लिपट लिया, एकदम पूरे ऊपर से नीचे तक लाल हो गए। लाल होने के बाद में जहां राम की सभा थी, सीता जी भी थे, सीता जी भी थी, राम भी, लक्ष्मण सब लोग पहुंचे, तो सब लोग देख करके हंसने लगे, राम भी हंसने लगे। उन्होंने पूछा जी आज ये कौन सा तमाशा किया, ये सिंदूर किस में लगा, हमारा उद्देश्य लगाने का क्या है? तो बोले यदि मैया ये केवल मांग में सिंदूर लगाने से आप सौभाग्यवान रहते हैं, चिरजीवी रहते हैं, इसलिए मैंने इसलिए चारों तरफ लगा दिया जिससे आप पूर्ण रूप से आरोग्य और सौभाग्यवान बने। देखो ऐसी सेवा करते हैं, उनकी सेवा का आर पार नहीं है। उनकी लाखों ऐसी कथाएं हैं जो कि सेवा का है। बहुत समय चला जाएगा, इसलिए संक्षेप में बतलाया ये प्रेमी भक्त हैं। किंतु एक बात है, प्रेमी भक्त हैं किंतु प्रेम जहां और उन्नत होता है वहां पर भक्ति भी उन्नति होती है। इनसे भी बड़े ऊंचे भक्त होते हैं। कौन है? पांडव। पांडव लोग कैसे हैं? अर्जुन के पलंग पर सोते हैं भगवान। यहां तक कि उनका रथ चलाते हैं, उनके घोड़ों को धोते हैं और जैसा करते हैं अर्जुन वैसा करते हैं, उनका आदेश पालन करते हैं। वो भगवान के वे अर्जुन के नौकर बन गए। क्यों? प्रेम ही उनका है, ये प्रेमातुर प्रेम पर भक्त हैं। हनुमान जी को कहा जैसे तुम इसकी ध्वजा पर आना हनुमान जी को, और इसको कोई कुछ ना कर सके, तो हनुमान जी को भी वहां पर आकर के उनकी रक्षा करना पड़ा। बहुत सी कथाएं हैं। देखो इतने से ही भगवान प्रसन्न नहीं हुए कृष्ण, उन्होंने अपनी बहन की शादी सुभद्रा की शादी किसके साथ में की? अर्जुन के साथ में की, और उनके साले बन गए संबंध से। अब कुंती के नाते से तो वो उनके भाई लगते हैं, और यहां कृष्ण उनके साले बन गए। इसकी भी बहुत विचित्र सब कथाएं हैं। समय बहुत चला जाएगा और कल का केवल समय है, और हमको अपना ये प्रसंग पूरा करना है, इसलिए संक्षेप में बतला रहा हूं। अर्जुन का पांडवों का द्रौपदी को चीरहरण के समय में क्या किया? वस्त्र बनकर आ गए, सब समय इनकी रक्षा की है, पांडवों के दास बनकर के पलंग पर सोए हैं, उधर से अर्जुन सुराय, इधर से ये सुराय एक ही पलंग पर, और कृष्ण के पैर अर्जुन की छाती से इधर में जा रहे हैं, और उधर से सिर अर्जुन का उनका पैर कृष्ण के छाती से इधर में जा रहा है। जो कृष्ण के छाती से जो अर्जुन का पैर जा रहा है उसको रुक्मिणी और सत्यभामा चमर दुला रही, और उधर कृष्ण का जो चरण है उसको द्रौपदी पंखे जल रही हैं, और राम उनके अर्जुन के मुख से रोम रोम से कृष्ण 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 आ रहा है। एक थाल में खाते हैं, अर्जुन की ताबेदारी करते हैं, अर्जुन की बाण के घोड़ों को भी सेवा करते हैं। ये हनुमान जी उनके एक साथ पलंग पर बैठ जाएंगे क्या? नहीं बैठ सकते। गलबहिया लगा लेंगे? नहीं लगा सकते, डरेंगे। और अर्जुन ऊपर में बैठ करके उनको आदेश देंगे, उनके घोड़ों को हांकते हैं, तरह तरह से सेवा करते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है प्रेम पर भक्त। इसमें एक बात याद रखनी चाहिए, अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया महाभारत के युद्ध में, आरंभ होने के समय में ही अर्जुन को मोह हो, जो ऐसा करते हैं वो नहीं जानते हैं। अर्जुन को कभी मोह नहीं हुआ, जैसे कृष्ण को मोह नहीं होता अर्जुन को भी मोह नहीं हुआ। इन सब बातों को आप लोग समझने की चेष्टा करेंगे, काम में आएगा। दूसरे ये सब बतला सकेंगे कि नहीं हमको संदेह है, कोई ऐसा ही उच्च कोटि का यदि कोई आए मर्मज्ञ तो बतला सकता है। गीता को तात्पर्य समझना साधारण किसी खेल नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए आप लोग समझिए और सुनिए। तो अर्जुन साधारण कोटि के भक्त नहीं है, अभी बतलाया ना कृष्ण उनके प्रेम के वशीभूत हैं, उनको भला मोह हो सकता है? जितेंद्रिय उनको कृष्ण ने कहा है, गुड़ाकेश माने क्या? अज्ञानता यहां नहीं है, गुड़ा का ईश, निद्रा के और अंधकार के बीच है, मैंने तत्व ज्ञानी है अर्जुन, इसलिए इनको मोह नहीं हो सकता है ना? तो अर्जुन को जो गीता सुनाया उनको लक्ष्य करके संसार के लोगों के लिए ये सुनाया, अर्जुन के लिए ही नहीं। उसमें प्रारंभ में ही महात्मा लिखा है, सर्व उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपांग नंदन पार्थो सुधीर भोक्ता गीता अमृत। गीता का अमृत है उसको जगत को दान करने के लिए अर्जुन को बछड़ा बना करके गाय को दुहता दुहा, उपनिषदों का सार मंथन करके जगत पास में। इसलिए अर्जुन को कभी मोह नहीं हुआ। एक बात और, किसी किसी की धारणा ऐसी है गीता का जो उपदेश है वो अर्जुन को कर्म में लगाने के लिए हुआ, और उनके उपदेशों के बाद में अर्जुन ने युद्ध किया, ऐसा जो लोग समझते हैं वो लोग गीता के तात्पर्य को नहीं समझ सके, बहुत दूर है गीता का ज्ञान उनसे। किसी भी शास्त्र का विचार जब हम करते हैं तो 6 बातों से उसका निरूपण होता है, उरुक्रम उपसंहार उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम और उपपत्ति। इन 6 विचारों को लेकर के किसी शास्त्र का विचार होता है जिसका क्या तात्पर्य है। कुछ लोग कहते हैं कि गीता कर्मवाद का या कर्मयोग का उपदेश करती है, इसलिए अर्जुन उसके अंत में युद्ध में लगे। इसलिए हम लोगों को भी गीता यही कहती है कि कर्म में लगो, या युक्ति संगत नहीं है। क्यों? कर्म किसको कहते हैं पहले समझिए। जो कुछ हम करते हैं क्या वही कर्म है? क्रियते जब कर्म जो कुछ हम करते हैं क्रिया वो कर्म नहीं है। मैं जा रहा हूं, राम जाता है, इसमें मैं क्या है? करता और जाता हूं, ये क्रिया है, इसमें कर्म कहां है? है एक है कर्ता, अंग्रेजी में सब्जेक्ट, और क्रिया है वर्ब है जाना, जाना, इसमें कर्म नहीं है। इसलिए क्रियाएं दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। जिसमें कर्म हो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। राम जा रहा है, राम खा रहा है, इसमें कर्म नहीं है, क्रिया है। इसलिए प्रत्येक क्रिया ही कर्म नहीं होगी, उद्देश्य के ऊपर में सब कुछ निर्भर करता है। मैं आम खाता हूं, क्या खाते हो? आम। किस लिए खाते हो? अपने स्वाद के लिए, तुष्टि के लिए आम खा रहा हूं, इसलिए क्रिया का फल कर्ता पर है, इसलिए ये कर्म हुआ, इसका फल भोगना पड़ेगा। जो जो कुछ कर रहे हो ये कर्म है, और ये सब समय करने के पहले, करने के बाद, करने के समय भी ये सब समय अपवित्र है। कर्म कभी भी शुद्ध नहीं होता, यदि भगवत अर्पित हो सकता है, अन्यथा नहीं, बिना भगवत अर्पित। वो श्लोक है ना, निष्कर्म अच्युत वर्जित हो, बस बस पहला सब, निष्कर्म अपनी अच्युत भाव वर्जित, निष्कर्म अर्थात जिसमें कोई आकांक्षा नहीं होती है, ऐसा जो निष्कर्म ज्ञान है, जब उसी की नहीं शोभा पाती यदि वो भगवत अर्पित नहीं है, तो कर्म तो सब समय अधोगति को पहुंचाने वाला है, इससे कल्याण नहीं हो सकता। जब तक कर्म है तब तक वो बंधन करेगा ही, चाहे वो शुभ हो तो सोने की बेड़ी से बांधा माने स्वर्ग इत्यादि, और यदि लोहे की बेड़ी है अर्थात कर्म का दुख पूर्ण जो सब समय बांधने वाला होता है। इसलिए गीता में कर्म का उपदेश नहीं हो सकता, बल्कि भक्ति के लिए बार बार कहा गया है। कर्म भी ऐसे करो, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र कर्म बंधन, यदि भगवान के लिए अर्पित करो कर्मों को, तब तो ये यज्ञ हुआ भगवान के लिए, और आसक्ति छोड़ करके करो, नहीं तो कर्म बांधेगा ही, वो किसी प्रकार से रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए गीता में, गीता एक तिजोरी है, संदूक है, नीचे में एक पर्दा, ऊपर में ढक्कन, और बीच में रत्न की पिटारी भरी पड़ी है। पहले नवाध्याय में गुह्य उपदेश, वो क्या है देखो, दूसरे में तत्व ज्ञान को दिया, हम शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा अजर अमर है, इस सबको आत्मा को शरीर से पृथक बतलाया। ये गुह्य तत्व, ये जो पहला जो छ जो अध्याय है, ये संदूक का ढक्कन है ऊपर वाला, और नीचे की पेटी क्या है? ये ज्ञान योग है, 13 से लेकर 18 तक ये पेंदी वाला है, और बीच में जो है वो क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग में 7 से लेकर 7, 8, 9, 10, 11, 12 में चूड़ांत कर दिया, भक्ति का स्वरूप बतलाया उसमें, और बतलाया जो ज्ञान सब समय कष्टदायक है उसको छोड़ करके हमारा नाम श्रवण कीर्तन इत्यादि रूपी जो भक्ति है सही सिद्ध होती है, बुद्धिमान लोग उसी को ग्रहण करते हैं। यही भक्ति योग ही गीता का प्रधान उद्देश्य है। कैसे देखो, गुह्य ये द्वितीय बतलाए, गुह्यतर गुह्यतम, और अंत में इन्होंने बताया गुह्य सर्व गुह्यतम भूया शुण में परमम वचन। इष्टोऽसि प्रतिजानो प्रियोऽसि असि में बतलाया। भक्त उस पिटारी में जो भक्ति देवी हैं वो ज्ञान को कुछ बल देती हैं और फिर कर्म को भी कुछ बल देती हैं, दोनों तरफ में। बिना भक्ति के योग से कोई भी कर्म और ज्ञान योग तपस्या कोई फल नहीं दे सकता। इसलिए बतलाया तपस्या विद को योगी ज्ञान मतोधिक कर्मी भाष्य योगी ततो भवान योगी नाम सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना सत्तामान जो मां भजते। हमारे विचार से कृष्ण कह रहे हैं, हमारे विचार से जो लोग सब कुछ छोड़ करके अनन्य हो करके भगवान कृष्ण का शरणापत्ति ग्रहण करके उनका जो भजन करते हैं अंतरात्मा से, वही लोग सर्वोत्तम है। डंके की चोट दे करके गीता में ये सब चीज को बतलाया गया। इतने भी यदि कोई इतने पर भी कोई सब देख सुनकर भी यदि कोई कहते हैं कि कर्मवाद को गीता का उद्देश्य है या कर्म है या कर्म जो, तो उनकी बुद्धि पर तरस आती है, तरस आती है, दुख होता है, नहीं समझ सकते। उनके गुरु ने उनको इस चीज को बतलाया नहीं। गीता में स्पष्ट रूप से करें सर्वधर्मान माम एकम, एकम कौन है वो अंगुली से दिखला माम एकम, मैं कौन या कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाला यहां युद्ध में महाभारत। और भी बतला माम एव जे प्रपद्यन्ते मायाम एताम, जो केवल मेरा शरण लेते हैं वही माया से दूर हो रहा। मैं कौन, यहां ज्ञान की बात नहीं रही। प्रपद्यन्ते मने शरणागत हो, भक्ति का द्वार है ये। और भी कहा
एक श्लोक है मुझे याद नहीं,
ते अपी माम एव कौन थे जजंती अभिधि पूर्वक माम एव केवल मात्र मैं अंगुल से दिखला। इसलिए अंतिम श्लोक में मैं बतला रहा हूं सर्वभूयतमं भूयस्वरूपं, मैं पुनः तुमको बतला रहा हूं, सुनो अर्जुन को, मन मना भव मद भक्तो मज्जाजी मां नमस्कुरु माम एव एष्यसिते प्रतिजानो प्रियस्य। अर्जुन देखो मथुरा के लोग बड़े भूखे होते हैं, तो मैं भी तो मथुरा का हूं, इसलिए मेरी बात झूठी हो सकती है, इसलिए तुम मेरे भक्त हो, तुम प्रतिज्ञा करो प्रतिजानो प्रियोस्म, तुम हमारे प्रिय भक्त हो, तुम झूठा नहीं कर सकते। हमारे भक्तों का जो बात होता है उसको मैं रक्षा करता हूं, उसको सत्य बना करके दिखला देता हूं। मैं कहूंगा तो मैं झूठा अपनी बात को मैं मुकर जा सकता हूं। हमने प्रतिज्ञा के जो अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, ओ मैं हरि से अस्त्र कहां तब शांतन पुत्र कहां, नहीं तो उनका बाप का बेटा नहीं। और क्या किया कृष्ण को, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ करके अस्त्र शस्त्र धारण करने पड़े। इसलिए अर्जुन को करे तुम मेरे प्रिय हो, तुम प्रतिज्ञा करो कि हमारे भक्तों का विनाश नहीं होता, और यही सर्वोत्तम धर्म है भक्ति का। क्या, और तुमको बतला रहा हूं मन मना भव, मन मना भव का अर्थ क्या, अपना चित्त मुझे दे दो, आविष्ट हो जाओ चित्त से मेरे अंदर। कैसे, इसका उदाहरण सुनिए। नंदगांव का एक युवक गोप, पास के किसी गांव में उसकी शादी हुई, और एक गोपी नवेली वधू, नवेली वधू समझते हैं, नवेली अभी नवी जिसकी शादी हुई, वो नवेली बहू उसके घर में आई। जब आई लोगों से उसकी बातें चर्चाएं सुनी, और ब्रज की एक ऐसी प्रतिभा है शक्ति है कि कोई भी जाए उसको प्रेम प्रकाशित कर देगी, तो बधु के अंदर में कृष्ण दर्शन की बड़ी लालसा जगी, मैं भी उस श्याम सुंदर का दर्शन करूं, लोग इतनी उसकी प्रशंसा करते हैं। उसके सास ने कहा खबरदार घर से निकला, खबरदार घर से मत निकलो, एक काला सर्प ब्रज में घूमता है वो काट लेगा, फिर उसका विष नहीं उतरेगा, मत जाओ बाहर में। और इतने में बांसुरी की आवाज आई और कृष्ण गौओं को लेकर के गोचारण के लिए बछड़ों को लेकर के जा रहे हैं, वन से निकट आई, उतावली होने लगी, बार बार जाना चाहती है, उसकी लड़की चली गई, यहां तक कि ब्रज का कोई भी लड़की लड़का वृद्ध तक कोई नहीं, जा करके रास्ते पर खड़े होकर के कृष्ण का जाना हुआ देख रहे हैं, हजारों गायों को लेकर के कृष्ण बंसी हुए और जा रहे हैं उधर में। ये गोपी की भी इच्छा, किंतु सास जाने नहीं थे, कहे जाएगी तुमको सांप डस लेगा, विष उतरेगा नहीं। तो उसने कहा जैसे तुम्हारी लड़की क्यों गई, उसको क्यों जाने दे, उसको सांप नहीं डसेगा। अरे तुम हमारी बात तो सुनो, तुम अभी नवेली आई है, हमारी लड़की तो यहीं की रहने वाली है, मत जाओ। तो उसने कहा जो तुम क्यों जा रही हो, अरे मैं भी पकी हुई हूं, मैं भी जाऊंगी, किंतु तुम मत जाना, पर जैसा जो कुछ होगा वो हम देख लेंगे, हम तो जाएंगे। घर से निकली और दरवाजे पर खड़ी होकर के एक टक से निर्विशेष नेत्रों से देखने लग गई, देखते ही रह गई। कृष्ण दूर से देखा इस नवेली को, अभी नई गोपी आई है, समझ गए उसके अंदर के भावों को। एक बछड़े की पोंछ जरा सा छू दी और कूदता हुआ जंपिंग करता हुआ ठीक वहीं पर पहुंचा। कृष्ण ने अपनी बंसरी से उसके गालों में स्पर्श कर दिया नीचे थोड़ी में, और मुस्कुरा करके बस चल दिए, उसके हृदय को चोरी कर लिया। फिर कैसी हो गई नवेली, वहीं की खड़ी रह गई, चित्त तो है नहीं, सब कुछ भूल गई, अपना शरीर तन मन की सूद भूल गई। फिर उसकी सास है, अरे क्या कर रही है, खड़ी है, एक घंटे हो गए, कृष्ण चले गए और सब कुछ हो गया, देखो तो हम लोग घर में लौट आई, या तुम यहीं पर खड़ी हो। अजय से इसका इसके अंदर में वो घुस गया है, जिसके अंदर में एक बार कृष्ण घुस गया कभी निकलेगा नहीं, बड़ा टेढ़ा है ना, जाएगा तो सीधा किंतु भीतर में वो जाएगा टेढ़ा, वो नहीं निकलता। बस वो उसको पकड़ करके ले गई, ए दधी दधी मंथन करो, जाओ घर से दही ले आओ, और ये है दधी मंथनी, यहीं पर बैठ करके करो। तो वो घर में गई और जाकर के एक हंडिया उठा ले आई, कौन से हंडिया उठा गए, मन तो आए नहीं वहां, वो तो कृष्ण के पास, कृष्ण चोरी करके ले गए, वो राई की एक हंडिया ले आई सरसों की, और उसी को मथने लगी। उसी सास ने देखा ये तो राई मथ रही है, दही तो मथ नहीं रही, अभी उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं लग गई, ये विष तो बहुत गहरा पहुंच गया। तो उसने कहा जल्दी से जा कुएं से पानी भर ला, और उसके सिर पर एक दो तीन घड़े रख दिए कलश, एक दो तीन। उन लोगों स्त्रियों को चलने का अभ्यास होता है, बिना पकड़े हुए ही ऐसे सिर से लेकर के चली जाएंगे, हाथ में दे दिया डोल और बाल्ची पानी खींच करके उसमें भरने के लिए, और एक हाथ में उसके अपने बच्चे को छोटे को उसकी गोदी में दे दिया, जाओ भर ले, माने किसी प्रकार से हो सो। वो किसी प्रकार से चली तो हाथ से पकड़ने की जरूरत नहीं, सधा हुआ उसका सिर, और बस एक हाथ में बच्चे को, दूसरे हाथ में डोल बाल्टी और सिर पर घड़े लेकर के कुएं पर पहुंची, पनघट पर। पनघट किसको कहते हैं, पन लगा हुआ है, हम आयन पर मिलेंगी तुमसे, इधर कृष्ण ने पन किया जी मैं भी आऊंगा, भेद वहीं पर होगी, इसको कहते हैं पनघट। पनघट पर पहुंची, कुएं से पानी खींचना था, और गोपियां भी पानी भर रही, मीठे पानी जरा दूर से ब्रज में मिलता है अभी भी, तो वो बच्चे को रखा और घड़े को उतार करके रखा, और फिर डोल को लिया, रस्सी को लिया, और उसमें फांस बना करके और घड़े में देना था, जो घड़े को दे करके डुबाएगी पानी से और खींचेगी, तो उसको तो ज्ञान नहीं है, उसने फांस बनाया रस्सी की, और वो फंदी लगा दी कहां, उस बच्चे के गले में, ज्ञान नहीं कि घड़ा है या क्या है, जब लगा दी, अरे हाँ हाँ ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, बच्चे को डुबाएगी मारेगी। एक गोपी ने जो जानती थी, किसी ने कहा जी इसको तो भूत लग गया, और जो जानने वाली गोपियां थी वो बोली भूत नहीं ये नंद का भूत है इसको लगा हुआ। किसी प्रकार से ये है तन्मयता। इसलिए अर्जुन यहां पर कह रहे हैं मन मन आभव। फिर किसी प्रकार से वो घर में लौट आई गई। वो कृष्ण का ये जादू या विष नहीं उतरता यदि किसी को कृष्ण ने एक नजर दे दी, ऐसे ही ये कृष्ण है, ब्रज में इसी के लिए आए हैं। तो मन मन अभाव अर्जुन को कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, जैसे गोपियां तन्मय होती है वैसे ही तुम अपना मन दो। अर्जुन कहते हैं ये युद्ध भूमि में ऐसा करना, आप कह रहे हैं युद्ध करने के लिए भी और मन को भी दे दूं, तन्मय हो जाऊं तो युद्ध कैसे होगा, आप कोई दूसरा उपाय तो बतलाइए सहज। मन मना भव मत भक्तो। अच्छा जब इतना नहीं कर सकता है तो क्या करो, मत भक्तो हमारा भक्त बन जाओ, श्रवण कीर्तन स्मरण और खंजड़ी और करताल लेकर के हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा। पर श्रवण कीर्तन करें या युद्ध करें, प्रभु हमारे लिए और कुछ सस्ती कुछ बतलाइए सस्ती। मदियादि हमारा अर्चन पूजन करो, प्रभु यहां पर कहां से कुश और कहां से अर्चन फूल पात्र इत्यादि ले अर्चन करूं या युद्ध करूं, और भी कोई सहज उपाय बतलाइए, जाओ एक बार ही हमारा नमस्कार करके आप युद्ध करो, कर्म तुमको स्पर्श नहीं करेगा, तुम्हारी विजय होगी। एक बार प्रणाम करने वाला नरक में कभी नहीं जाता, वो कमर कस करके बैकुंठ लोक हो जाता है। एक बार भी यदि कोई प्रणाम करे भगवान, हे भगवान आपको नमस्कार है। विशेष करके जो गले में जिसकी तुलसी है और ये ऊर्ध्वपुंड तिलक है जिसको, और जिसने भगवान से नाता जोड़े है, तुम मेरे हो प्रियतम हो हमारे सखा हो, उसके यहां हे मृत्यु तुम मत जाना, जम ने अपने दूतों को कहा था। इसलिए आप लोग भी धारण करेंगे तुलसी गले में, हाथ में तुलसी की माला, तिलक, कभी भी जम नहीं आएगा, यदि आएगा तो विष्णु दूत। तो उन्होंने कहा अच्छा ये ठीक है, मैं अभी आपको प्रणाम करता हूं, ओम नमः कृष्णाय, और फिर युद्ध धारण किया, उनमें युद्ध की विजय हुई। इसलिए गीता का तात्पर्य क्या हुआ, भक्ति सर्वधर्मान परित्यजमान गौ प्रमानंदे। आज यहीं तक, अब कल के लिए प्रस्तुत रहे, ठीक इसी समय में आ जाए, देरी करने से पूरी कथा नहीं सुनेंगे।
हरे कृष्णा। Thus ends the class on the evening of the 7th of February 2002 in Lautoka, Fiji. हरे कृष्णा।
करो नहीं तो कर्म बांधेगा ही, वो किसी प्रकार से रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए गीता में, गीता एक तिजोरी है, संदूक है, नीचे में एक पर्दा, ऊपर में ढक्कन, और बीच में रत्न की पिटारी भरी पड़ी है। पहले नौ अध्यायों में गुह्य उपदेश, वो क्या है देखो, दूसरे में तत्व ज्ञान को दिया, हम शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा अजर अमर है, इस सबको आत्मा को शरीर से पृथक बतलाया, ये गुह्य तत्व। ये जो पहला जो छ जो अध्याय है ये संदूक का ढक्कन है ऊपर वाला, और नीचे की पेटी क्या है, ये ज्ञान योग है 13 से लेकर 18 तक, ये पेटी वाला है, और बीच में जो है वो क्या है, भक्ति योग। भक्ति योग में सप्तम से लेकर के सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश में चूड़ांत कर दिया, भक्ति का स्वरूप बतलाया उसमें, और बतलाया जो ज्ञान सब समय कष्टदायक है उसको छोड़ करके हमारा नाम श्रवण कीर्तन इत्यादि रूपी जो भक्ति है सही सिद्ध होती है, बुद्धिमान लोग उसी को ग्रहण कर, यही भक्ति योग ही गीता का प्रधान उद्देश्य है। कैसे देखो गुह्य, ये द्वितीय बतलाए गुह्यतर गुह्यतम, और अंत में इन्होंने बताया गुह्यत सर्व गुह्यतम भूयाशुण में परमम बचत इष्टो असि प्रतिजानो प्रियो असि असि बतलाया। भक्त उस पिटारी में जो भक्ति देवी हैं वो ज्ञान को कुछ बल देती हैं और फिर कर्म को भी कुछ बल देती है, दोनों तरफ में। बिना भक्ति के योग से कोई भी कर्म और ज्ञान योग तपस्या कोई फल नहीं दे सकता, इसलिए बतलाया तपस्या विधि को योगी ज्ञान मतोधिक कर्मिक भाव से योगी तथो
भवान
योगी नाम सर्वेशाणाम मदगतेन अंतरात्मना सत्था मान जो मान भजते। हमारे विचार से कृष्ण कह रहे हैं, हमारे विचार से जो लोग सब कुछ छोड़ करके अनन्य हो करके भगवान कृष्ण का शरणापत्ति ग्रहण करके उनका जो भजन करते हैं अंतरात्मा से, वही लोग सर्वोत्तम। डंके की चोट दे करके गीता में ये सब चीज को बतलाया गया। इतने भी यदि कोई इतने पर भी कोई सब देख सुनकर अभी यदि कोई कहते हैं कि कर्मवाद को गीता का उद्देश्य है या कर्म है या कर्म जो, तो उनकी बुद्धि पर तरस आती है दुख होता है, नहीं समझ सकते। उनके गुरु ने उनको इस चीज को बतलाया नहीं, गीता में स्पष्ट रूप से करें सर्वधर्मान माम एकम एकम कौन है वो अंगुली से दिखला माम एकम मैं कौन या कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाला यहां युद्ध में महाभारत और भी बतला माम एव जे प्रपद्यन्ते मायाम एताम जो केवल मेरा शरण लेते हैं वही माया से दूर हो रहा। मैं कौन, यहां ज्ञान की बात नहीं रही। प्रपद्यन्ते मने शरणागत हो, भक्ति का द्वार है ये। और भी कहा
एक श्लोक है मुझे याद नहीं,
ते अपि माम एव कौन थे जजन्ति अभिधिपूर्वक माम एव केवल मात्र मैं अंगुली से दिखला। इसलिए अंतिम श्लोक में मैं बतला रहा हूं सर्वभूयतमं भूयस्य मैं पुनः तुमको बतला रहा हूं, सुनो अर्जुन को मन मना भव मद भक्तो मज्जाजी मां नमस्कु माम एव एष्यसि ते प्रतिजानो प्रिय। अर्जुन देखो मथुरा के लोग बड़े भूखे हुए थे, तो मैं भी तो मथुरा का हूं, इसलिए मेरी बात झूठी हो सकती है, इसलिए तुम मेरे भक्त हो तुम प्रतिज्ञा करो प्रतिजानो प्रियोष्म तुम हमारे प्रिय भक्त हो, तुम झूठा नहीं कर सकते। हमारे भक्तों का जो बात होता है उसको मैं रक्षा करता हूँ, उसको सत्य बना करके दिखला देता हूँ। मैं कहूंगा तो मैं झूठा अपनी बात को मैं मुकर जा सकता हूँ। हमने प्रतिज्ञा की अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की ओ मैं हरि से अस्त्र कहां तब शांतन पुत्र कहां नहीं तो उनका बाप का बेटा नहीं। और क्या किया, कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा छोड़ करके अस्त्र शस्त्र धारण करने पड़े। इसलिए अर्जुन को कहे, तुम मेरे प्रिय हो, तुम प्रतिज्ञा करो कि हमारे भक्तों का विनाश नहीं होता, और यही सर्वोत्तम धर्म है भक्ति का। क्या, और तुमको बतला रहा हूं, मन मना भाव। मन मना भाव का अर्थ क्या है, अपना चित्त मुझे दे दो, आविष्ट हो जाओ चित्त से मेरे अंदर। कैसे, इसका उदाहरण सुनिए। नंदगांव का एक युवक गोप, पास के किसी गांव में उसकी शादी हुई, और एक गोपी नवेली वधु, नवेली वधु समझते हैं, नवेली अभी नवेली जिसकी शादी हुई, वो नवेली बहु बहु उसके घर में आए। जब आई, लोगों से उसकी बातें चर्चाएं सुनी, और ब्रज की एक ऐसी प्रतिभा है, शक्ति है, कि कोई भी जाए उसको प्रेम प्रकाशित कर देगी, तो बधु के अंदर में कृष्ण दर्शन की बड़ी लालसा जगी, मैं भी उस श्याम सुंदर का दर्शन करूं, लोग इतनी उसकी प्रशंसा करते हैं। उसके सास ने कहा, खबरदार घर से निकला, खबरदार घर से मत निकलो, एक काला सर्प ब्रज में घूमता है, वो काट लेगा, फिर उसका विष नहीं उतरेगा, मत जाओ बाहर में। और इतने में बांसुरी की आवाज आई, और कृष्ण गौओं को लेकर के गोचारण के लिए, बछड़ों को लेकर के जा रहे, वंश निकट आई, उतावली होने लगी, बार बार जाना चाहती है, उसकी लड़की चली गई, यहां तक कि ब्रज का कोई भी लड़की लड़का वृद्ध तक कोई नहीं, जा करके रास्ते पर खड़े होकर के कृष्ण का जाना हुआ देख रहे हैं। हजारों गायों को लेकर के कृष्ण बंसी वे और जा रहे हैं उधर में, ये गोपी की भी इच्छा, किंतु सास जाने नहीं थे, कहे जाएगी तुमको सांप डस लेगा, विष उतरेगा। तो उसने कहा, जैसे तुम्हारी लड़की क्यों गई, उसको क्यों जाने थे, उसको सांप नहीं डसेगा। अरे तुम हमारी बात तो सुनो, तुम अभी नवेली आई है, हमारी लड़की तो यहीं की रहने वाली है, मत जाओ। तो उसने कहा, जो तुम क्यों जा रही हो, अरे मैं भी पकी हुई हूं, मैं भी जाऊंगी, किंतु तुम मत जाना, पर जैसा जो कुछ होगा हम देख लेंगे, हम तो जाएंगे। घर से निकली और दरवाजे पर खड़ी होकर के एक तक से निर्विशेष नेत्रों से देखने लग गई, देखते ही रह गई। कृष्ण दूर से देखा इस नवेली को, अभी नई गोपी आई है, समझ गए उसके अंदर के भावों को। एक बछड़े की पोंछ जरा सा छू दी, वो कूदता हुआ, जंपिंग करता हुआ ठीक वहीं पर पहुंचा। कृष्ण ने अपनी बंसुरी से उसके गालों में स्पर्श कर दिया नीचे थोड़ी में, और मुस्कुरा करके बस चल दिए, उसके हृदय को चोरी कर लिया। फिर कैसी हो गई नवेली, वहीं की खड़ी रह गई, चित्त तो है नहीं, सब कुछ भूल गई, अपना शरीर तन मन की सूद भूल गई। फिर उसकी सास है, अरे क्या कर रही है, खड़ी है, एक घंटे हो गए, कृष्ण चले गए और सब कुछ हो गया, देखो तो हम लोग घर में लौट आई, तुम यहीं पर खड़ी हो। और जैसे इसका इसके अंदर में वो घुस गया है, जिसके अंदर में एक बार कृष्ण घुस गया कभी निकलेगा नहीं, बड़ा टेढ़ा है ना, जाएगा तो सीधा, किंतु भीतर में वो जाएगा टेढ़ा, वो नहीं निकलता। बस वो उसको पकड़ करके ले गई, अरे दधी दधी मंथन करो, जाओ घर से दही ले आओ, और ये है दधी मंथनी, यहीं पर बैठ करके करो। तो वो घर में गई और जा करके एक हंडिया उठा ले आई, कौन से हंडिया उठा ले, मन तो है नहीं वहां, वो तो कृष्ण के पास, कृष्ण चोरी करके ले गए, वो राई की एक हंडिया ले आई सरसों की, और उसी को मथने लगी। उसी सास ने देखा, ये तो राई मथ रही है, दही तो मथ नहीं रही, अभी उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं लग गई, ये बीज तो बहुत गहरा पहुंच गया। तो उसने कहा, जल्दी से जा कुएं से पानी भर ला, और उसके सिर पर एक दो तीन घड़े रख दिए, कलश, एक दो तीन। उन लोगों स्त्रियों को चलने का अभ्यास होता है, बिना पकड़े हुए ही ऐसे सिर से लेकर के चली जाएंगे, हाथ में दे दिया डोल और बाल्ची पानी खींच करके उसमें भरने के लिए, और एक हाथ में उसके अपने बच्चे को छोटे को उसकी गोदी में दे दिया, जाओ बरले, मैंने किसी प्रकार से हो सो, वो किसी प्रकार से चली तो हाथ से पकड़ने की जरूरत नहीं, श्रद्धा हुआ उसका सिर और बस एक हाथ में बच्चे को, दूसरे हाथ में डोल बाल्टी और सिर पर घड़े लेकर के कुएं पर पहुंची, पनघट पर। पनघट किसको कहते हैं? पन पन लगा हुआ, ये हम आए पर मिलेंगी तुमसे, इधर कृष्ण ने पन किया ये मैं भी आऊंगा, भेंट वहीं पर होगी, इसको कहते हैं पनघट। पनघट पर पहुंची, कुएं से पानी खींचना था और गोपियां भी पानी भर रही, मीठे पानी जरा दूर से ब्रज में मिलता है अभी भी, तो वो बच्चे को रखा और घड़े को उतार करके रखा और फिर डोल को लिया, रस्सी को लिया और उसमें फांस बना करके और घड़े में देना था, जो घड़े को दे करके डुबाएगी पानी से और खींचेगी, तो उसको तो ज्ञान नहीं है, उसने फांस बनाया रस्सी की और वो फंदी लगा दी कहां? उस बच्चे के गले में। ज्ञान नहीं कि घड़ा है या क्या है, जब लगा दी, अरे हाँ हाँ ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, बच्चे को डुबाएगी मारेगी। एक गोपी ने जो जानती थी, किसी ने कहा कि इसको तो भूत लग गया, और जो जानने वाली गोपियां थी वो बोली भूत नहीं ये नंद का भूत है इसको लगा। किसी प्रकार से ये है तन्मयता। इसलिए अर्जुन यहां पर कह रहे हैं मन मना भव। फिर किसी प्रकार से वो घर में लौट आई गई। वो कृष्ण का ये जादू या विष नहीं उतरता यदि किसी को कृष्ण ने एक नजर दे दी, ऐसे ही ये कृष्ण है, ब्रज में इसी के लिए आए हैं। तो मन मना भव अर्जुन को कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, जैसे गोपियां तन्मय होती है वैसे ही तुम अपना मन दो। अर्जुन कहते हैं ये युद्ध भूमि में ऐसा करना, आप कह रहे हैं युद्ध करने के लिए भी और मन को भी दे दूं, तन्मय हो जाऊं तो युद्ध कैसे होगा, आप कोई दूसरा उपाय तो बतलाइए सहज। मन मना भव मत भक्त हो। अच्छा जब इतना नहीं कर सकता है तो क्या करो, मत भक्त हो, हमारा भक्त बन जाओ, श्रवण कीर्तन स्मरण और खंजड़ी और करताल लेकर के हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हे राधे राधे पर श्रवण कीर्तन करें या युद्ध करें, प्रभु हमारे लिए और कुछ सस्ती कुछ बतलाइए सारथी, मदियादि हमारा अर्चन पूजन करो। प्रभु यहां पर कहां से कुश और कहां से अर्चन फूल पात्र इत्यादि ले अर्चन करूं या युद्ध करूं, और भी कोई सहज उपाय बतलाइए, जाओ एक बार ही हमारा नमस्कार करके आप युद्ध करो, कर्म तुमको स्पर्श नहीं करेगा, हमारी विजय होगी। एक बार प्रणाम करने वाला नरक में कभी नहीं जाता, वो कमर कस करके बैकुंठ लोक हो जाता है, एक बार भी यदि कोई प्रणाम करे भगवान, हे भगवान आपको नमस्कार। विशेष करके जो गले में जिसकी तुलसी है और ये ऊर्ध्वपुंड तिलक है जिसको, और जिसने भगवान से नाता जोड़े है, तुम मेरे हो प्रियतम हो हमारे सखा हो, उसके यहां हे मृत्यु तुम मत जाना, जम ने अपने दूतों को कहा। इसलिए आप लोग भी धारण करेंगे तुलसी गले में, हाथ में तुलसी की माला तिलक, कभी भी जम नहीं आएगा, यदि आएगा तो विष्णु जी। तो उन्होंने कहा अच्छा ये ठीक है, मैं अभी आपको प्रणाम करता हूं, ओम नमः कृष्णाय, और फिर युद्ध धारण किया, उनमें युद्ध की विजय हुई। इसलिए गीता का तात्पर्य क्या हुआ, भक्ति सर्वधर्मान परित्यजमान गौ प्रमानंदे, आज यही तक। अब कल के लिए प्रस्तुत रहे, ठीक इसी समय में आ जाए, देरी करने से पूरी कथा नहीं सुने।
हरे कृष्णा।
Thus ends the class on the evening of the 7th of February 2002 in Lautoka, Fiji. Hare Krishna.